हरे कृष्णा। तो इस टोटा गोपीनाथ के सुंदर बगीचे में आपका स्वागत है। बहुत रमणीक स्थान है, आप देख सकते हैं। यही वो गार्डन है जहाँ पर श्री राधा और गोपीनाथ जी अपनी निरंतर लीला करते रहते हैं। तो गोपीनाथ जी का अभी मंदिर बंद है, कुछ देर के बाद वो खुलेगा, तो हम कथा के बाद में वहाँ जाएंगे और उनके लिए भजन गाएंगे। आपके भजन का पत्र है ना सब लोग के पास। तो जब भी भगवान ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया नाभि कमल से, है ना, तो जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। उनको पता नहीं चला कि वो कहाँ पर हैं, किस लिए आए हैं, क्या उनके जीवन का उद्देश्य है। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्मलोक है वो कमल है सबसे ऊपर का, और डेट में पूरा उनका बाकी भवन है, सब बाकी लोक है। तो ब्रह्मा जी सभी लोकों में जाकर आए समझने के लिए कि किस लिए आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आया। तब जाकर भगवान कृष्ण ने उनके हृदय में प्रेरणा दिया, तपह, और चतुश्लोकी भागवत बताया, और चतुश्लोकी भागवत बताने से ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ कि किस लिए उनका जन्म हुआ है, उद्देश्य क्या है उनके जन्म का। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान उनको अपने गौलोक वृंदावन का दर्शन कराते हैं, और जब वो गौलोक वृंदावन का दर्शन कराते हैं, सत्य को देखते हैं, इसका मतलब ये है। तो उस समय श्री गोपीनाथ जी का मूर्ति प्रकट हो जाती है, और उस श्री गोपीनाथ जी के मूर्ति को प्रकट होते हुए होने के बाद में ब्रह्मा जी उनके सामने बैठकर ब्रह्म संहिता लिखते हैं, मतलब गाते हैं, जो हमारे
कहाँ पर किताब कहाँ गई, सॉन्ग बुक कहाँ गया।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकट कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस प्रकार के श्लोकों का वो रचते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्म संहिता जो है ये उस समय सृष्टि के निर्माण के समय श्री गोपीनाथ जी के सामने ब्रह्मा जी ने गाई है। वही ब्रह्म संहिता जब लुप्त हो गई तो फिर वो केश अनंत आदिकेशव मंदिर जो है केरल में है, वो वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, वहाँ पर उन्होंने उसको फिर पुनः प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ की जो मूर्ति है वो कोई हाथ से बनाई गई मूर्ति नहीं है, वो भगवान के धाम में स्वयं प्रकट हो गई मूर्ति है। उसकी कई विशेषताएँ इसकी है, आगे हम बताएंगे आपको। फिर कालांतर में आप देख जानते हैं भगवान अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं, फिर आप प्रकट करते हैं, काल के प्रभाव से लीलाएं भगवान की मूर्तियां प्रकट होती हैं, भगवान के धाम प्रकट होते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं, फिर भगवान उनको उचित समय पर प्रकट करते हैं। उस प्रकार से बीच में ये मूर्ति लुप्त हो गई थी। तो मैंने आपको सवेरे बताया कहानी में, कल भी बताया था कि जैसे संन्यास लेने के पश्चात 1510 साल में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए, और उन्होंने सब भी भक्तों को प्रताप रुद्र राजा के माध्यम से, सार्वभौम भट्टाचार्य के माध्यम से रहने की व्यवस्था की। तो उस समय गदाधर पंडित को उन्होंने इस सुंदर बगीचे में रहने का इंतजाम किया। यह बगीचे का नाम है यमेश्वर टोटा। आपको कहानी याद है यमेश्वर की, मैंने आपको बताया था उधर, कहाँ पर बताया था, श्वेत गंगा में, कि कैसे भगवान ने नील माधव और लक्ष्मी जी ने संवाद किया ब्रह्मा जी से और यमराज से। तो यमराज ने फिर यहीं पर शिवलिंग बनाकर एक बहुत सुंदर बगीचा निर्माण किया। तो एक्चुअली ये यमेश्वर टोटा है, यमेश्वर गार्डन है ये। यहाँ पर आगे जाकर आपको यमराज के जो पूजनीय शिव जी की मूर्ति भी है, आगे जाकर मार्कंडेयेश्वर महादेव भी है जिनको मार्कंडेय मुनि ने स्थापन किया था। ये सब बड़ा सुंदर बगीचा है, उपवन है। इसमें गदाधर पंडित जो है वो रहने लगे। गदाधर पंडित कौन है? गदाधर पंडित साक्षात श्रीमती राधा रानी है, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी लेकिन इस लीला में वो पुरुष शरीर धारण करके आते हैं। जैसे भगवान के सखी हैं ललिता सखी, वो इस लीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी के रूप में आते हैं, वो भी पुरुष शरीर में है। विशाखा देवी कौन से रूप में आती है? रामानंद राय के रूप में आती है, जो राजा प्रताप रुद्र के दक्षिण भारत के गवर्नर थे, जिनको राजा प्रताप रुद्र वीआरएस दे देते हैं लेकिन तनखा के साथ, वो रामानंद राय विशाखा जी के अवतार हैं। तो इस तरह से भगवान की परम सखी वृंदावनेश्वरी वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी जो है वो गदाधर पंडित के रूप में आती है। माधव मिश्रा और रत्नावती के ये पुत्र हैं और इनका जन्म जो है वो नवद्वीप मायापुर धाम में हुआ है। जन्म से ही इनका स्वभाव ऐसा था कि इनको शरीर के आनंद में कोई रुचि नहीं थी, कोई भी इंद्रिय भोग में उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, ना उनमें उनको रुचि थी। और जन्म से बड़े गंभीर भक्त थे वो, बड़े गंभीर मतलब कभी भी उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो मतलब की नहीं है, बिल्कुल भगवान से संबंधित बातें उन्होंने की। शांत स्वभाव, नम्र स्वभाव और विरक्ति, किसी भी विषयों के वस्तुओं में उनको रुचि नहीं थी। और चैतन्य महाप्रभु यानी कि बचपन का नाम उनका है निमाई, निमाई पंडित, निमाई पंडित और गदाधर पंडित दोनों की बहुत गहरी मैत्री थी, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। निमाई पंडित जब चैतन्य महाप्रभु बाल लीला करते हैं तो बहुत एरोगेंट उनका लीला है, हाँ जब पढ़ाई करते हैं गंगादास पंडित के गुरु गुरुकुल में तो कुछ ही समय में बहुत विद्वा विद्या प्राप्त कर लेते हैं और फिर हर एक मिलने वाले व्यक्ति को चैलेंज करते हैं वाद विवाद में और डिफीट करते थे। वो इस तरह से मदमत्त होकर वो नदिया के गलियों में घूमते थे, लेकिन गदाधर पंडित बहुत नम्र थे, बड़े विद्वान थे वो भी, लेकिन कभी किससे वाद विवाद नहीं करते थे। इतना विरोधाभास स्वभाव का उनका होने पर भी गदाधर की और निमाई की मैत्री जो थी वो बहुत गहरी थी। और जब भी निमाई अपने स्वभाव से किसी प्रॉब्लम में आते थे तो गदाधर पंडित उनको संभाल लेते थे। तो सची माता जो चैतन्य महाप्रभु की माता है, निमाई की माता, वो देखते हैं कि गदाधर जो है बहुत ही शांत स्वभाव का है, कभी कभी मेरा बालक निमाई नियंत्रण के बाहर हो जाता है, कुछ भी कर लेता है। बालक अवस्था में उन्होंने क्या क्या किया है, घर के मटके फोड़े, कभी कुत्ते को घर पे लेके आए, बहुत झगड़ा किया माता के साथ में, गाँव गाँव में जाकर साधुओं को कष्ट दिया, नदी में जाकर साधुओं को पैर से उल्टा कर दिया, किसी के मुंह में उन्होंने पिचकारी लगा दी, ऐसे बहुत सारा लीला उन्होंने बचपन में किया था। उसके बाद वो गया, गए गया धाम जो है वहाँ पर जाके उनकी ईश्वरपुरी से मुलाकात हुई जो उनके गुरु बने, और ईश्वरपुरी ने उनको दीक्षा देकर फिर वो शांत हो गए। तब वो कहते हैं गदाधर को कि मैंने इतनी शरारतें की, लेकिन गदाधर तुमने कभी भी अपने मन को विचलित नहीं होने दिया, तुम कितने महान भक्त हो भगवान के, क्योंकि दोनों भगवान के भक्त बनकर आए ना, राधा रानी भी आई है, चैतन्य महाप्रभु भी, सब लोग ललिता विशाखा सभी लोग भगवान के भक्त बनकर चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य लीला में छन्न अवतार मतलब छुपा हुआ अवतार है, भगवान स्वयं अपने भक्तों के भक्ति करने से जो उनको आनंद मिलता है उसको चखने के लिए स्वयं भक्त बनकर आए। वो सर्वज्ञ हैं सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों को उनकी ही भक्ति करने के बाद में जो आनंद मिलता है वो उनको पता नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए भक्ति करते हैं और अनुभव खुद करते हैं। इसलिए सभी लोग भक्त बनकर आए, इसलिए उनका अवतार छन्न अवतार मतलब छुपा हुआ अवतार माना गया। तो यहाँ पर एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए और गदाधर पंडित से कहा कि कृष्ण कहाँ है, वेर इज कृष्णा। तो गदाधर जी ने कहा अभी आ रहे हैं, क्योंकि इतना तीव्र विरह उनका हो गया था कि वो जमीन को खोदने लगे अपने हाथ से, अभी मुझे कृष्ण से मिलना है, मैं जमीन ढूंढूंगा उनको, जमीन को हाथ से फाड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो मट्टी को बाजू में करते हैं तो कुछ उनको सख्त वस्तु लगती है, कठिन वस्तु, और खोदते हैं तो श्री गोपीनाथ जी की मूर्ति प्रकट हो जाती है, तो जो लुप्त हो गई थी बीच में, फिर वो चैतन्य महाप्रभु की इस लीला से फिर पुनः प्रकट हुई। और जैसे ही गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं तो गदाधर को बुलाते हैं, गदाधर मुझे एक बहुत प्रिय और सुंदर वस्तु प्राप्त हुई है, क्या तुम इस भेंट को स्वीकार करना चाहोगे, ले लीजिए। तो गदाधर पंडित को वो श्री गोपीनाथ जी की जो विग्रह हैं वो उनको पूजा करने के लिए वो अर्पण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के घर पे शालिग्राम की पूजा भी थी, शालिग्राम शिला, राधा रानी के भाव में वो शालिग्राम कृष्ण का स्वरूप है ना, तो राधा रानी के भाव में जब वो श्री कृष्ण के शरीर को शालिग्राम के रूप में स्पर्श करते थे तो एकदम भाव विभोर होते थे, उनके आंखों से अश्रुधारा बहती थी नदियों की तरह, उनके वस्त्र और शालिग्राम शिला सब कुछ गीला हुआ करता था। तो कभी शालिग्राम को वो दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि इतने आंसू बह रहे आंखों में, आंसुओं का जो स्तर जमा हो गया है, तो वो शालिग्राम को देख ही नहीं पाते थे, केवल हाथ में पकड़ के रो रहे। फिर वो रखते थे, फिर बाहर जाके जरा घूम के आते थे शांत होकर, फिर दोबारा प्रयास करते थे कि शालिग्राम की पूजा करें, लेकिन फिर वही अनुभव राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण के शरीर को श्री अंग को स्पर्श कर रहे हैं, फिर रोने का, फिर रोमांच खड़े हो रहे हैं। कई दिन तक उन्हें प्रयास किया पर उन्होंने सोचा कि अभी ये जो शालिग्राम की पूजा है मुझसे नहीं होने वाली। फिर वो गदाधर जी के पास में आते हैं और कहते हैं कि शालिग्राम की शिला आप ही अपने पास रखो और आप ही उसकी पूजा करो। तो एक हो गए गोपीनाथ जी और एक हो गए शालिग्राम जी, तो दोनों की पूजा यहाँ पर गदाधर पंडित स्वीकार करते हैं। इनको टोटा गोपीनाथ क्यों कहा गया है? क्योंकि वो यमेश्वर टोटा यानी कि यमेश्वर का जो गार्डन है उसमें इनका प्रकट्य हुआ था, इसलिए इनको टोटा गार्डन टोटा गोपीनाथ कहते हैं। फिर इनकी बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं, चैतन्य चरितामृत 17 खंड का लिटरेचर है, उसमें केवल प्रेम कहानियां हैं भक्तों के बीच में, आदान प्रदान कैसे होता है, कैसे भक्तों के अंदर रिश्ते होते हैं, नाते संबंधी होते हैं, और किस प्रकार से भक्त लोग एक दूसरे से संबंध करते हैं, उनका रिश्ता क्या होता है, यही पूरा चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। और चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज जी ने लिखा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, और स्वरूप दामोदर जी ने जो ललिता के अवतार हैं उन्होंने उनके बचपन की लीलाओं के नोट्स रखे थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उनके बाद में के जीवन के नोट्स लिखे थे। तो इन दोनों के साथ बैठकर कृष्णदास कविराज ने बहुत सारा अभ्यास किया और अपने उम्र के 90 साल की अवस्था में उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, बंगाली भाषा में है वो, और श्रील प्रभुपाद जी ने उस बांग्ला का इंग्लिश में अनुवाद किया है जो 17 खंडों में प्रकाशित हैं। चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर मधुर प्रेम लीलाएं उसके अंदर हैं और अधिकतर प्रसाद का वर्णन है उसके अंदर, कहाँ कहाँ भक्त भगवान के भक्तों ने कैसे कैसे प्रसाद लिया, कौन से व्यंजन लिए और कैसे कैसे व्यंजन खाने के बाद में रोमांच का अनुभव हुआ, आंखों से आंसू आए, बहुत सुंदर वर्णन है उसके अंदर। हाँ, तो जब ये बंगाल में थे गदाधर और चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में, तो उस समय छत्रग्राम से एक व्यक्ति आते हैं, मुकुंद देव और भक्त है भगवान के चैतन्य महाप्रभु, मुकुंद दत्त, वो भी उसी गांव से हैं। तो मुकुंद दत्त जो है एक बड़े महान भक्त को लेकर नवद्वीप में आते हैं, और मुकुंद दत्त जो है वो गदाधर पंडित को जानते थे। जय हो श्री राधे। तो उस भक्त का नाम था पुंडरीक विद्यानिधि, और ये पुंडरीक जो थे बड़े विद्वान थे, बड़े श्रेष्ठ भक्त थे, और मुकुंद को उनका जो महिमा था सब पता था, इसलिए खास करके गदाधर को बोलते हैं आइए, एक बड़े सुंदर भक्त जो है वो छत्रग्राम से आए हुए हैं। और जैसे जाते हैं, अभी ये देखिए गदाधर जो है पूरे विरक्त हैं, उनको कोई रुचि नहीं संसार में, कोई किसी विषय में आसक्ति नहीं है, और पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे सिल्क के कपड़े पहने हुए हैं, बहुत कीमती शॉल पहन के हैं। हाँ, उनके दो दो साइड में दो व्यक्ति खड़े हैं, वो उनको हवा दे रहे हैं, चमर से हवा दे रहे हैं, और वो मुँह से तांबुल खा रहे हैं, और एक व्यक्ति उनको आईना दिखा रहा है और वो बार बार आईने में देख रहे हैं, सुगंधित तेल लगाकर बालों को उन्हें सजाया हुआ है, और बड़े कीमती आसन पर बैठे हैं एकदम राजा की तरह। तो गदाधर जी सोच रहे हैं, अरे मुकुंद तुमने, मतलब मन में सोच रहे हैं कि मुकुंद ने मुझे ऐसे व्यक्ति से क्यों मिला रहे, वो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुकुंद जो है जिस तरह से भाव गदाधर के चेहरे पे देखते हैं, वह समझते हैं उनके मन में क्या प्रश्न है। तो मुकुंद अभी सोचते हैं कि अभी इनकी जो महानता है, महात्म्य है, इसको मैं प्रकट करना चाहिए। तो फिर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है 10वें स्कंद में, जिसमें यही श्लोक सुखदेव जी को रोकने के लिए व्यासदेव जी ने गाया था। हाँ, सुखदेव जी जब गर्भ से जन्म हुआ उनका, बहुत 18 साल तक माता के गर्भ में रहे, उनको बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि इस विश्व में जन्म लें। क्यों जन्म लेना है? इसमें विषय वासना है, इसमें दुख है, जन्म है, मृत्यु, जरा व्याधि, सब कुछ भरा हुआ है। तो वो गर्भ से निकल ही नहीं रहे थे। तो गर्भ में पहले व्यास मुनि ने उनको भागवत सुनाया और समझाया बहुत गर्भ से, हाँ, क्योंकि ब्रह्मलीन थे वो गर्भ में ही। तो बाहर आए तो सीधे चलने लगे जंगल में, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर जंगल में जाने लगे। बस संसार में कोई रुचि नहीं है। तो व्यास देव जी तो पिताजी है ना, वो भाग रहे हैं उनके पीछे, अरे बेटा रुको रुको, घर चलो आप, घर चले आओ, वो सुन ही रहे, जा रहे हैं आगे, जा रहे हैं। तो आगे जाकर कुछ ऐसे बच्चे थे, वो लकड़ी तोड़ रहे थे, तो वो दो श्लोक बोलते हैं श्रीमद् भागवत के, अहो बकीयम सनकाल कूटम, कि वो परम परम दयालु भगवान जो उनको मारने के लिए विष भर के अपने स्तनों में आई थी, कालकूट विष भर के, उसको भी उसने उद्धार किया, माता का स्थान दिया अपने धाम में। ऐसे प्रिय भगवान जो है वन में डोल रहे हैं, मोर पंख धारण किए हुए, हाथ में बांसुरी है, आगे पीछे ग्वाल बाल है, और गैयाओं को लेकर गौचारण कर रहे हैं, सुंदर वर्णन करते हैं उस श्लोक से। तो सुखदेव जी रुक जाते हैं, बालकों से पूछते हैं कि ये आपने कहाँ सीखा? तो उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया है। तो आपके गुरुदेव कहाँ रहते हैं? चलो हम ले चलते हैं आपको। फिर सुखदेव जी को वो बच्चे जो हैं अपने गुरु के पास लेके आते हैं, और उनके गुरु कौन है? व्यास देव जी। व्यास देव जी उनको पुनः श्रीमद् भागवत सुनाते हैं और श्रीमद् भागवत में पारंगत कर देते हैं। वही श्लोक जो मैंने आपको भी बताया, इसका गुणगान उद्धव जी अपनी स्मरण में कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कई संवाद है, उद्धव जी मैत्रेय मुनि को मिलते हैं हरिद्वार में, और वो पूर्ण ध्यान में मग्न थे, कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के बाद में विरह में थे और कृष्ण भगवान के याद में भी थे। तो मैत्रेय जी से मिलने के बाद तुरंत उद्धव जी सभी उनका जीवन चरित्र बताते हैं, कृष्ण भगवान के बारे में याद करते हैं, कैसे हमारा संबंध था, कैसे हम लोग घूमते थे, बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे, प्रसाद लेते थे, शिकार खेलने जाते थे, उठते थे बैठते थे, हंसी मजाक सब कुछ, उनका जो घनिष्ठ संबंध था उसका वर्णन करते हैं। उसमें वो ये श्लोक बताते हैं, अहो बकीयम सन कालकूटम, कैसे दयालु थे भगवान। हाँ, सबसे पहले जन्म के बाद नन्ही अवस्था में एकदम इन्फंट, उसको मारने के लिए भयंकर राक्षसी आती है, जो उसका ओरिजिनल साइज था कितना कितना था, 12 मील लंबी थी वो। उसके स्तन पर्वत के समान थे। तो वो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके स्तनों में विष भर के आती है, और भगवान उसको लेते हैं, उसको दूध पीते हैं, विष को भी लेते हैं, खून को भी चूसते हैं, और प्राण को भी चूस लेते हैं, और तड़पती हुई पुतना का वध देहांत होता है। तो पुनः अपने ओरिजिनल रूप में आती है वो, जंगल में, पूरे जंगल में ऐसी फैली हुई है 12 मील तक। और केवल भगवान ने वो माता के रूप में स्तनपान करने को आई थी, इतना ही उन्होंने याद रखा, बाकी सब कुछ भगवान ने ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया उसके ऊपर। मुझे दूध पिलाने के लिए आई थी, मतलब माता के भाव से आई थी वो। पुराने जमाने में पिछले अवतार में कौन थी वो? बलि महाराज की बहन थी वो, रत्नमाला। जब बलि महाराज के सामने वामन देव प्रकट होते हैं तो उसका सुंदर रूप देख के बालक का लगता है कि मेरा ऐसा पुत्र हो जाए तो कितना अच्छा है, मैं उसको स्तनपान कराऊंगी, ऐसे भाव उत्पन्न होता है। कुछ देर बाद जब वो छल करते हैं वामन देव, और दो पैरों में सब भूमि को नाप लेते हैं, और वामन देव बलि महाराज को एकदम भिखारी बना देते हैं, तो उसको गुस्सा आता है, जैसे मैं इस बालक को काश मेरी शक्ति हो तो मार डालूंगी, ऐसा उसके मन भाव आता है। उसके बाद में द्वेष का भाव आता है, तो पहले वात्सल्य बाद में द्वेष, मिलकर वो अगले जन्म में पुतना बनती है, बकासुर की और अगासुर की बहन, कंस की फ्रेंड। और फिर वो माता के रूप में मात्सल्य और द्वेष दोनों साथ में लेकर आती है। तो ऐसा सब होने पर भी भगवान उसके हृदय का द्वेष, उसके राक्षसी प्रवृत्ति, उसका भयंकर स्वभाव, ये सबको दुर्लक्ष कर देते हैं, और केवल माता बन के आए तो उसको याद रखते हैं, और सब कुछ अनाथों से शुद्ध करने के पश्चात जो बस उसका चूसते हैं ना स्तन को, तो इतनी वेदना होती है उसको कि इसके सारे अनर्थ जल के भस्म हो जाते हैं उसके अंदर, और केवल जो भावना लेकर आई थी वात्सल्य की वही बचती है, उसको भगवान स्वीकार करते हैं और अपने धाम में अपनी माता यशोदा के धात्री के रूप में उनको मुक्ति देते हैं। तो यही श्लोक मुकुंद दत्त, हाँ, वापस हम लोग अपने इस सीन में आ रहे हैं। ये सब बैकग्राउंड क्यों बताया आपको, कि वो श्लोक जो है उसमें भगवान का इतना सुंदर वर्णन है, उनके दयालु करुणामय स्वभाव का, कि कैसे भगवान जीव के अंदर से जो उनके लिए अनुकूल वस्तु है, प्रिय वस्तु है, वही लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। जैसे गुरु महाराज हमारे हृदय के अंदर केवल वो भक्ति की चिंगारी जो है छोटी सी, उसको देखते रहते हैं, अनर्थों को देखते नहीं है, खाली उस चिंगारी को हवा देते रहते हैं अपने संग द्वारा, और उस चिंगारी को अग्नि में रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। और जब वो चिंगारी की अग्नि बनती है, वो जानते हैं कि अग्नि सब भी अनर्थों को भस्म कर देगी। उस तरह से भगवान केवल भक्तों के अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं, सकारात्मक, उसी को देखते हैं। तो ये श्लोक, दो श्लोक मुकुंद दत्त वहां पर पुंडरीक विद्यानिधि के सामने गाते हैं, और जैसे ही वो गाते हैं वैसे भाव में आते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, रोमांच खड़े होते, कंठ गदगद होता है, और वो जमीन अपने आसन से नीचे गिर जाते हैं। हाँ, पहले बहुत पहले पाल वाल सवार कर आईने में देख रहे हैं, पान चबा रहे हैं, बांबुल, हाँ, अचानक उनका भाव बदल जाता है, एकदम भाव विवर होकर वो अपने कुर्सी से जो आसन से नीचे गिर जाते हैं, लोटपोट होने लगते हैं। 10 आदमी उनको पकड़ने जाते हैं तो पकड़ नहीं पाते, उनको संभाल नहीं पाते, और बहुत देर तक ऐसे जो होते हैं ना, मुठभेड़ चलती रहती है, वो उनको संभालने का प्रयास करते हैं, वो बिल्कुल नियंत्रण के बाहर जाते हैं और कुछ देर बाद में बेहोश हो जाते हैं। कई घंटे तक बेहोश रहते हैं भगवान के प्रेम की भावना में। जैसे ही भगवान की स्मृति उनको होती है श्लोक के द्वारा, एकदम सब कुछ भूल जाते हैं। तब गदाधर को एहसास होता है, अरे मैंने मन में क्या सोचा उसके उनके बारे में, कि ये तो विषयी व्यक्ति है, हाँ, संसार के भोग लेने वाले वस्तु व्यक्ति है। तो मुकुंद को धन्यवाद करते हैं, मुकुंद मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, करणी हूँ मैं, कि आपने मुझे एक बड़ा अपराध करने से बचाया, एक महान संत का। और ऐसी उनकी भावना होती है कि यही मेरे गुरु होने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सलाह करते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको हाँ कहते हैं, और बहुत सुंदर मुहूर्त पर पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं वो गदाधर पंडित को दीक्षा देते हैं। अभी पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? ये राधा रानी के पिताजी हैं। ब्रजलीला में इनका नाम वृषभानु है। वृषभानु ये बरसाना के राजा हैं, वृषभानुपुर के, और उनकी कन्या है वृषभानु नंदिनी राधा रानी। तो वही पिताजी पुंडरीक विद्यानिधि बनकर आते हैं और कन्या गदाधर पंडित बन के आते हैं और पिता से दीक्षा ले लेते हैं। और उस दीक्षा के समय पुंडरीक विद्यानिधि कहते हैं कि कई जन्मों के जन्म जन्मांतर के पुण्य और भक्ति के पश्चात गदाधर पंडित जैसा शिष्य प्राप्त होता है, ऐसा बताते हैं उनकी योग्यता को देखते हुए। तो फिर यहाँ पर जब आते हैं तो उनको गोपीनाथ को सौंप देते हैं, उसके बाद में शालिग्राम को सौंप देते हैं। एक बार यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आते हैं और फिर विरह में जाते हैं भगवान के लिए, बहुत तीव्र विरह में जाते हैं। तो कृष्ण कहाँ है? बोला कृष्ण है, आ रहे हैं। कृष्ण कहाँ है? अभी मुझे दर्शन कराओ। बोलो आपके हृदय में है, आप चिंता मत करो, आपके हृदय में बैठे हैं। हृदय में है, तुरंत अपनी नाखूनों को हृदय में ऐसे छाती में घुसाते हैं और छाती फाड़ने का प्रयास करते हैं, तो उनको रोकते हैं। बोले नहीं, अभी आएंगे, धीरज रखो। ये लीला भी इसी जगह पर हुई है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर सुंदर लीलाओं को प्रकट किया है। और इस सुंदर वन में जहाँ पर राधा और गोपीनाथ जी निरंतर लीला करते हैं, वहाँ पर भक्तों को आनंद दिया है। तो हर रोज सवेरे मैंने आपको बताया कि सवेरे बहुत सुबह पहले जल्दी उठकर चैतन्य महाप्रभु समुद्र में स्नान करते थे, उसके बाद में जगन्नाथ के दर्शन करने जाते थे, और कई घंटे सुबह रहे गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर चैतन्य महाप्रभु को द्विभुज रूप में मुरली बजाते हुए दर्शन करते थे। आंखों में आंसू बहते थे, वहाँ पर कुंड बना हुआ है उनके आश्रम का, खंभे पर उनके उंगली के निशान हैं। तो वो दर्शन करने के पश्चात वो हरिदास ठाकुर को मिलने आते थे, और 2-3 घंटे फिर सवेरे हरिदास ठाकुर से नाम के बारे में, नाम तत्व के बारे में, नाम जप के बारे में, इस विधि के बारे में चर्चा करते थे। फिर दोपहर के लिए वापस समुद्र में स्नान करते थे, दोपहर का भोजन करते थे गंभीरा में, और फिर गदाधर पंडित के पास यहाँ पर आते थे, और हर रोज 2-3-4 घंटे यहाँ बिताते थे। तो गदाधर पंडित जो थे वो भगवान के विग्रह की पूजा करने के पश्चात, गोपीनाथ जी की पूजा करने के पश्चात उनका एक ही काम था, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने में उतने मग्न रहा करते थे, टोटली एब्सॉर्ब्ड, कंप्लीट एब्सॉर्प्शन। ये स्मरण की बहुत उच्च अवस्था है। ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी अपने अनुस्मृति नामक भाष्य में कहते हैं कि एब्सॉर्प्शन इज द लास्ट स्टेज ऑफ रिमेम्बरेंस, कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड रिमेम्बरेंस, और उसके आगे की स्थिति है समाधि, जिसमें समाधि का मतलब यह नहीं कि गड्ढा खोद के उसमें बैठ जाना है फिर शरीर को त्याग देना है, वो मायावादियों का संन्यास का समाधि का कंसेप्ट है। समाधि का अर्थ है यही है, निरंतर तीव्र और सतत सातत्य के रूप में जब समर्पण होता है भगवान का पूर्ण भाव से, तो उसको समाधि कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप सब लोग भी समाधि अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके मन में निरंतर भगवान का स्मरण है प्रेम से भरा हुआ, तो वही समाधि अवस्था है। तो ऐसे दिव्य अवस्था में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते थे गदाधर पंडित। और श्रीमद् भागवत का थोड़ा महात्म्य ऐसा है, छोटी सी कथा मैं बताता हूं आपको कैसे श्रीमद् भागवत में प्रकट हुआ। जब व्यासदेव जी देखते हैं कि आगे कलयुग में लोगों की स्मृति नष्ट होने वाली, मैंने आपको कल बताया था कि तीन युग तक केवल सुनकर लोग याद करते थे श्रुतिधर के रूप में, लेकिन जब कलयुग का प्रारंभ होने वाला था तो व्यासदेव जी त्रिकालदर्शी, वो देखते हैं कि भविष्य में लोगों की स्मृति कम कम होती जाएगी, उनको याद नहीं रहेगा। तो ये जो श्रुति है, जो ज्ञान है, श्रुति का मतलब ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, उसको लिखना चाहिए। तो फिर लिखने को बैठते हैं। पहले सारे ज्ञान को जो है चार वेदों में विभाजित करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और फिर बाद में उपनिषद लिखते हैं, पुराण लिखते हैं, और उनके हिसाब से सारा ज्ञान जो है वो लिख देते हैं। जिनको जितना वो तो भगवान के स्वयं छह ऐश्वर्य हैं, उसमें से जो ज्ञान का ऐश्वर्य भगवान का है, असीम ज्ञान, अमर्यादित ज्ञान जो है भगवान का है, वो हिस्से का वो अवतार है स्वयं, वो मूर्तिमंत ज्ञान है व्यासदेव जी। तो उनको तो कहने की जरूरत नहीं कि ज्ञान क्या है, वो सब कुछ जो उनको लिखना है वो सब लिख देते हैं। नारद मुनि उनके गुरु हैं, उनके आदेश से ये काम करते हैं वो, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जब हम कहते हैं कि गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया आक्य आरना कोरी हो मने आशा, कि गुरु जी के आज्ञा का एक चित्त होकर आप पालन करना चाहिए, उसके अलावा कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए मन में गुरु जी के इच्छा के अलावा। और इन्हीं की कृपा से, गुरु की कृपा से आत्मा की शुद्धि होती है और कल्याण होता है और उद्धार हो जाता है। और एक साइड इफेक्ट उसका ऐसा है कि गुरु की आज्ञा सही रूप से पालन करने के पश्चात हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। इतना सब करने के पश्चात भी कैसा उनका प्रक्रिया था, गणेश जी को उन्होंने अपना राइटर बनाया था, लिपिक, और वो श्लोक बोलते थे और गणेश जी उसको लिखते थे। उनका एक कंडीशन था कि जो श्लोक आप लिखेंगे वो पहले आप समझेंगे, और समझ में आया तो ही आप लिखेंगे। उतना समय उनको मिलता था अगला श्लोक तैयार करने में। तो हिमालय के किनारे में बैठे हुए हैं, हिमालय के गुफा में बैठे हुए हैं, एक गुफा में ऊपर व्यासदेव जी हैं, नीचे गुफा में गणेश जी बैठे हुए हैं। कोई लाउडस्पीकर नहीं, माइक्रोफोन नहीं, उधर केवल चेतना के द्वारा ट्रांसमिशन है, हृदय में स्फुरण हो रहा है मंत्रों का, वो गणेश जी सुन रहे हैं अगली गुफा में बैठकर, और वहां पर उसका लेखन कर रहे हैं। इस प्रकार से सारे वेद, सारे उपनिषद, पुराण लिख देते हैं, फिर भी व्यासदेव जी को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो उनको समझ में आता है कि कुछ गलत हो गया है, कुछ त्रुटि रह गई है या कुछ गलती हो गई है। तो उदास होकर व्यासदेव जी जो है नदी किनारे, उसका नाम है सरस्वती नदी, उसके किनारे बैठे हुए, जो केवल हिमालय में प्रकट होती है, उसके आगे अप्रकट हो जाती है। जमीन के अंदर से नासिक में आती है, फिर त्रिवेणी संगम में इलाहाबाद में प्रकट हो जाती है, लेकिन जमीन के अंदर से ही। तो नदी किनारे हिमालय में बैठे हैं और शोक कर रहे हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। तो उनके शोक की अवस्था को देखकर, प्रामाणिक अवस्था है ना, वो सिंसियरली ही इज थिंकिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो उनके गुरुजी आकाश से प्रकट होते हैं, नारद मुनि वीणा लेकर। हम पूछते हैं, अरे तो आप तो ज्ञान के अवतार हो और आपको ऐसा दुखी क्यों होना चाहिए। पहले थोड़ा मजाक कर लेते शिष्य का, फिर शिष्य व्यासदेव जी बोलते हैं कि मेरी ये समस्या है। तो उनको कहते हैं, अरे आपने सारा शास्त्र लिखा लेकिन अगर भगवान का आपने गुणगान नहीं किया, भगवान के दिव्य चरित्र का वर्णन नहीं किया, तो आपके सारे शास्त्र कितने भी पूर्ण होंगे तो भी अधूरे हैं। इसलिए अभी आप जाकर भगवान के चरित्र का वर्णन करो, भगवान के भक्तों का चरित्र का वर्णन करो, भगवान के उनके साथ जो संबंध है, जो दिव्य लीलाएं हैं, उनका वर्णन करो, तब जाकर आपका शास्त्र लेखन जो है वो परिपूर्ण हो जाएगा। तो फिर व्यासदेव फिर संतुष्ट होकर गुफा में जाते हैं और श्रीमद् भागवत का लेखन करते हैं। सब आचार्य कहते हैं कि श्रीमद् भागवत एक परिपूर्ण शास्त्र है, अमलम पुराणम, उसके अंदर कोई मल नहीं है, मतलब कोई भौतिकता नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं है, कोई ज्ञान कांड नहीं है, कोई सिद्धि कांड नहीं है, कोई योग कांड नहीं, कुछ नहीं, उसके अंदर केवल भगवान की भक्ति का वर्णन है। उसके अलावा श्रीमद् भागवत में अन्य कोई वर्णन नहीं है। किम वा परेर ईश्वरी, ऐसा वर्णन किया उसका कि इसके सिवा, इसके अलावा और किस शास्त्र की आवश्यकता क्या है, ऐसे कहा गया है। सो ये शास्त्र को अगर तुम अगर हम लोग वेद वेदों को अगर पेड़ को उपमा देते हैं कि वेद पेड़ जैसे हैं, उसके पेड़ में शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल है, फल, लेकिन पेड़ का जो सार होता है वो फल के रूप में प्रकट होता है, इज दैट राइट? पेड़ का जो एसेंस है, अगर आम का बीज बोया है आपने तो आम जो है वो आखिर में आता है, सबसे पहले शाखाएं होती है, पेड़ बड़ा होता है, कई साल जीता है, उसके बाद में आम आने लगते हैं। यही बात आमले के लिए भी वैसे ही है, सब फल जो है बहुत दिन के बाद में आते हैं, लेकिन फल फल जो है वो पेड़ का सार होता है। तो ये श्रीमद् भागवतम वेद के वृक्ष पर आया हुआ सबसे आखिरी परिपक्व फल है। इसको प्राप्त करने से जो पेड़ का जो सार है वो सब प्राप्त हो जाता है, यही इसका महात्म्य है। इसकी कहानी भी ऐसे कि श्रीमद् भागवत का केवल श्रवण करने मात्र से क्या हम बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। हाँ, नित्यम भागवत सेवा मतलब नित्यम भागवत के श्लोकों का सेवन करने से क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो भी अभद्र है वो सब नष्ट हो जाता है, और हृदय में नैष्टिकी भक्ति मतलब जो उसको हिला नहीं सकते, नॉट शेकेबल, स्थिर भक्ति, दृढ़ भक्ति का हृदय में विकास होता है, ऐसा ये शास्त्र है। ठाकुर भक्त सिद्धांत जी कहते हैं, जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कहते हैं कि अगर पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी और सभी लाइब्रेरी में से ग्रंथालय में सब ग्रंथ नष्ट हो जाएंगे, सभी कुछ शास्त्र जो है सब नष्ट हो जाएगा और केवल श्रीमद् भागवतम बचेगा, तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि श्रीमद् भागवत को बचने से और ग्रहण करने से मनुष्य जीवन में क्या प्राप्ति करनी है इसका सारा ज्ञान उसमें दिया हुआ है। और श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है कि श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां जो हैं, उनकी जो भगवान के प्रति भक्ति है उसके रहस्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। अब यहां पर क्या सीन है, गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी है वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है जो यहां पर हो रही है। यहां का जो रहस्य है, यहां के जो लीलाएं हैं वो बहुत गहरी, यानी कि डीप, हाँ, गाढ़ कहते हैं मराठी में उसको, इस प्रकार की लीला है। तो ये शास्त्र जो है वो दिन में 3-4 घंटे श्रीमद् भागवत का अध्ययन चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित साथ में किया करते थे, श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में और स्वयं राधा रानी गदाधर पंडित के भाव में, दोनों के संबंधों के विषय में जो लीलाएं हैं, रहस्य है, वो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। और यहाँ का उनका पठन जो है वो, जब दोनों इस ग्रंथ का अध्ययन यहाँ करते थे, दोनों की आंखों से अश्रुओं की नदी बहती थी, और दोनों नदियां मिलकर ग्रंथ जो था उसकी सारी स्याही उन्होंने मिटा दी थी, क्योंकि उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कोई कॉपीज नहीं थी, हस्तलिखित ग्रंथ हुआ करते थे। अब गुरु अपने शिष्यों की तरह देता था, फिर वो आगे किसी को लिखवाते थे। अभी 18,000 श्लोक है, कोई लिखने बैठेगा तो कई महीने लगेंगे उसको, ऐसे बहुत दुर्मिल, बहुत दुर्लभ कॉपी हुआ करती थी उसकी, और स्याही से लिखते थे उसको। तो अधिक सारा श्रीमद् भागवतम जो है इन दोनों के अश्रुओं से मिट चुका था, लेकिन उनको कंठस्थ भी था, तो बार बार चैतन्य महाप्रभु आते थे। और प्रहलाद की जो कथा है 7वें स्कंद में आती है, ध्रुव महाराज की जो कथा है वो 4वें स्कंद में आती है, वो 100-100 बार सुनते थे। हाँ, हम लोग एक एक कथा में एक श्लोक के बारे में बोलते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक एक लीला जो है, ध्रुव महाराज की लीला एक बार पढ़ के हो गई, बहुत ही मधुरता से, बड़े प्रेम से गदाधर पंडित उसको समझा देते, लेकिन वो खत्म होने के बाद बोलते दोबारा बोलो, और बीच में नाचते थे आनंद से, विभोर होकर फिर बैठते थे, फिर कथा सुनते थे, फिर और एक बार बोलो, ऐसे करके 100-100 बार उन्होंने ध्रुव महाराज की और प्रहलाद की कथा सुनी है इस जगह बैठकर। इसको कहते हैं आस्वादन, हाँ, नॉट जस्ट रीडिंग, रीडिंग करते हैं ऐसे ही मनोरंजन के लिए करते, लेकिन जब कहते ना स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी, एनालिटिकल स्टडी, मतलब क्या, उसके रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं, दो शब्दों के बीच में, दो लाइन के बीच में क्या रहस्य छुपा हुआ है उसको जानने का प्रयास करते हैं गुरु महाराज के आदेश में और मार्गदर्शन में। और श्रीमद् भागवत जी अथाह सागर है, इसके अंदर गुरु महाराज की कृपा होगी तो आप हर समय जिंदगी भर नया 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 गहरा अर्थ आपको मालूम पड़ेगा इसके अंदर। तो हमारे लिए, मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत का निर्माण व्यासदेव ने क्यों किया है, क्योंकि इसके एक श्लोक के पठन से हमारे हृदय के अनर्थ नष्ट हो सकते हैं और हमारे हृदय में भक्ति का उगम हो सकता है। और श्रीमद् भागवत का इतना महत्व है कि सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में, वैष्णव संप्रदाय में श्रीमद् भागवत को प्रमाण माना गया है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्थो महान, यानी कि जो हमारा पंचम पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ क्या है, लौकिक पुरुषार्थ, भौतिक पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के नियम का पालन करना, शरीर की इंद्रियों का भोग देना, काम हाँ, अर्थ यानी कि धन कमाना, और अंत में हो सके तो मोक्ष प्राप्त करना, ये सब भौतिक माना गया है। इट इज ऑल मटीरियल ओनली फॉर द सेल्फ। लेकिन पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। और ये पंचम पुरुषार्थ जो है ये श्रीमद् भागवत के पठन से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल भक्ति का रहस्य है। कोई कुछ करने से ये प्राप्त होगा, संतान प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, यश मिलेगा, कीर्ति बढ़ेगी, इसको कर्मकांड कहते हैं। हाँ, ये सारे जो विधियां हैं इसमें आखिर में क्या होता है, फलश्रुति, कि ये करने से संतान अच्छी होगी, ये करने से बुद्धिमान संतति प्राप्त होगी, ये करने से अच्छा जमाई प्राप्त होगा, ये करने से धन प्राप्त होगा, उन्नति होगी, आयु बढ़ेगी, आरोग्य बढ़ेगा, ये सब कर्म कांड का प्रमाण है। और ज्ञान कांड का प्रमाण क्या है, विरक्ति उत्पन्न होती है और फिर दुनिया से विरक्ति होकर इस दुनिया को से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है। ये भी एक नेगेटिव लेवल है, क्योंकि केवल जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। आगे करना क्या है, हमने शराब छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, मांसाहार छोड़ दिया, फिर करना क्या है, खाना क्या है, ये भी प्रश्न होता है ना। दिस इज नेगेटिव, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, फिर प्रश्न उठता है कि छोड़ने के बाद में करना क्या है। करना है भगवान के नाम का जप करना है, प्रसाद प्राप्त करना है, जो भी बचा हुआ सब कुछ छोड़ के जो बचता है उसको भगवान के लिए बनाकर उनको अर्पण करके प्रसाद के रूप में खाना है, भक्तों का संग करना है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना है, ग्रंथों का अध्ययन करना है। दिस इज पॉजिटिव, इसको भक्ति की विधि बताई गई। एक विधि है, एक निषेध है। जो हम लोग छोड़ते हैं उसको निषेध कहा गया, जो हम लोग पालन करते हैं उसको विधि कहा गया है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत ऐसा दिव्य शास्त्र है कि सब विधियों के परे हैं। उसके फलश्रुति के रूप में ना आपको धन मिलेगा, ना आपका कीर्ति बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा, केवल आपके आत्मा का भगवान के साथ संबंध जुड़ेगा। भक्तिर भवति नैष्टिकी प्रेम पुमार्थो महान। तो प्रभुपाद जी इस बात को बड़े अच्छी तरह जानते थे। जब प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया और वृंदावन में आए, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, उन्होंने उनको आदेश दिया था कि आप पश्चिम जगत में जाओ, वहाँ पर इस भक्ति का प्रचार करो। तो वृंदावन में आए, वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर के गोस्वामी ने उनको आमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे मंदिर में रहिए। बड़े भक्त थे प्रभुपाद जी, प्रसिद्ध थे उस समय भी। उनकी मथुरा में केशव गौड़िया मठ में दीक्षा हुई थी संन्यास की, सब जानते थे उनको। तो वो आते हैं और सबसे पहले श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में अनुवाद करना आरंभ करते हैं। मैं उन पुजारियों को जानता हूँ राधा दामोदर मंदिर के, कई दो पीढ़िया तीन पीढ़िया को जानता हूँ मैं। तो उस समय जो थे आचार्य वहाँ के, अभी वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उस समय जवान बालक थे वो। तो वो कहते हैं कि हमारे आश्रम में जब प्रभुपाद जी ने दो कमरे रेंट में लिए थे, ₹5 के रेंट से दो कमरे लिए थे, एक कमरे में उनका रसोई था, एक कमरे में वो भागवत का अनुवाद करते थे। तो इतने मग्न हुआ करते थे, वो केवल उसको पढ़ते नहीं थे, क्या केवल उसको अनुवाद नहीं कर रहे थे, श्रीमद् भागवत के गहराई में वो डुबकी लगा रहे थे। और उन्होंने कहा है कि जब मैं श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहा था तो दोज एक्सप्लेनेशंस आर माय स्पिरिचुअल एक्सटेसीज, ये मेरे हृदय के जो आध्यात्मिक आनंद है उसका ये क्या कहते हैं इसको, प्रकटीकरण है, प्रकट्य है, इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ माय एक्सटेसी ऑफ माय हार्ट। इस तरह से उन्होंने सभी श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य लिखा। और घंटे घंटे वो रहा कर रहते थे बिना पानी, बिना नाश्ता, बिना भोजन के। मंदिर की तरफ से उनका थाली जो है वो आता था, दरवाजे में रखते थे वो, और वो कई घंटे वहाँ पड़े रहता था, लंच की थाली डिनर तक पड़े रहते थे, और कमरे बंद हुआ करते थे और उसमें अंदर वो लिख दिन भर लिखते थे। रात को कमरे से बाहर निकलते थे कई घंटे घंटे अनुवाद करने के बाद, और आंखों में आंसू लेकर राधा दामोदर जी के बाहर झाड़ू लगाते थे। रूप गोस्वामी की समाधि भी उस मंदिर में है, वहाँ पर झाड़ू लगाते थे, साफ करते थे, और फिर थोड़ा बहुत भोजन करते थे। बीच में कभी जाकर लोही बाजार में जाके भिक्षा करके आते थे माधुकरी। इस तरह से उन्होंने मग्न होकर श्रीमद् भागवत का लेखन किया। और वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का जो पहला स्कंध है, भागवत में 12 स्कंध है, अलग अलग विषयों को उसमें चर्चा किया गया है। श्रीमद् भागवत जो है उसको ऐसे भी कहा गया है कि वो भगवान का शरीर है। जब भगवान का शरीर, जो भगवान ने अवतार लिया और भगवान ने लीला समाप्त करके वो अंतर्धान हो गए, जैसे ही भगवान अंतर्धान हो गए श्रीमद् भागवतम प्रकट हो गया। कृष्णे स्वधामो पकते, जब भगवान अपने धाम में पधार गए लीलाओं को समाप्त करके दोबारा अपने धाम में गए, तभी पृथ्वी के क्षितिज पर श्रीमद् भागवत का उदय हुआ। तो श्रीमद् भागवत को भगवान के शरीर की उपमा दी गई है। प्रथम स्कंद जो है, दूसरे स्कंद जो है, वो उनके पाद पद्म यानी चरण कमलों का उपमा दिया गया है, और दशम स्कंद जो है जहां पर श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष चरित्र दिया है उसको भगवान का मुख कमल माना गया है। तो इस तरह से प्रथम स्कंद में जब उन्होंने अनुवाद पूर्ण किया तो तीन खंड में किया उसको। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कितने साल मैं जीऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी उम्र 67-68 हो चुकी थी अमेरिका जाने के पहले। इसलिए उन्होंने जो भी उनको कहना था, एक जीव को इस विश्व में अभी के समय में, वर्तमान समय में, एक मनुष्य जीव को भगवत धाम में जाने के लिए क्या आवश्यक है समझना, यह सारा अनंत शास्त्रों से सार निकालकर भागवत के तात्पर्य के रूप में उन्होंने लिखा और अपने फर्स्ट कैंटो यानी फर्स्ट स्कंद जो है उसका अनुवाद पूरा किया। और जब ये पूरा हुआ, जब पहला स्कंद का पहला हिस्सा पूरा हुआ, तो वो दिल्ली गए और भिक्षा करके उन्होंने प्रिंटर के पास वो प्रिंट करने दिया। दिल्ली के धूप में खड़े रहकर उन्होंने इस ग्रंथ को बेचे, कुछ ग्रंथों को बेचा, उसके से दूसरा स्कंद को प्रिंट करने दिया। फिर उसको धूप में खड़े रहकर बैक टू गॉड मैगजीन के साथ में उन्होंने उसको बेचा। कई बार वो बेहोश होकर रस्ते में भी गिर गए, दिल्ली में अकेले थे, तब कोई इस्कॉन संस्था नहीं थी, हजारों लाखों फॉलोअर नहीं थे उनके, 108 मंदिर नहीं थे उस समय। ऐसे करके उन्होंने तीनों स्कंदों को छपवाया, भिक्षा करके, माधुरी करके, धन इकट्ठा करके। प्रिंटर पूछते थे, आप लोग आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब आपको क्या जरूरत है कि उधार में आप मेरे से प्रिंटिंग करा रहे हो। वो कहते हैं, यथावकाश आपको समझ में आएगा मैं क्या करने वाला हूं, अभी आप मेरे लिए कृपा करके उधार में प्रिंटिंग करा दो, मैं भिक्षा करके पैसा ला के दूंगा आपको। तो उनका इंटरव्यू आता है, उनके जीवनी पर एक फिल्म बनाई गई है, यू आर एवर वेल विशर, अगर मुमकिन हुआ तो आपको एक शाम को उसको दिखाने का हमारा प्लानिंग है। वो प्रिंटर कहते हैं कि मुझे हमेशा आश्चर्य हुआ करता था कि ये बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ छोड़ के संन्यास लेकर वृंदावन में रह रहा है, क्यों मेरे पास आकर उधारी में किताब छप रहा है। बैठ के भजन करना है तो भजन आराम से कर सकते हैं, उधारी में इतना छापने की जरूरत क्या है। वो कहते थे कि सभी विश्व जो है वो तप रहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, संसार दावा नलली लोखा त्राणाय कारुण्य घना घनात्व, सब संसार जो है जन्म मृत्यु के चक्र में जल रहा है, उनको बचाना मेरा फर्ज है, मेरे गुरु जी का आदेश है कि ये विचारों को, ये संदेशों को, प्रेम का संदेश जो है वो लेकर मुझे विश्व भर जाना है, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। जब इतना सारा महत प्रयास करके जब वो तीन खंड वाला पहला स्कंद पूरा होता है तो वो लेकर प्रभुपाद जी मुंबई आए और सुमति मुरार जी के पास बैठे और गिड़गिड़ाए बहुत कि मुझे अमेरिका जाना है प्रचार करने के लिए। तो स्वामी जी आप अमेरिका क्यों जाते हो, बहुत ठंड है वहाँ पर, आपको यकीन नहीं इतना ठंड है वहाँ पर, आप ठंड में ही आपका शरीर छूट जाएगा वहाँ पर, और बहुत भयंकर अवस्था है वहाँ पर, लोग व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं, कहाँ आप टिक पाएंगे वहाँ पर इतनी बुरी अवस्था में। मुझे आपको देखकर बहुत दुख होता है कि आप ऐसी अवस्था में कैसे मैं आपको भेजूँ वहाँ पर, इसलिए मैं टिकट नहीं दूंगी आपको, क्योंकि उनका शिपिंग कॉरपोरेशन का बिजनेस था। फिर भी रोज उनके सीढ़ियों पर जाकर बैठते थे श्रीमद् भागवत को लेकर, देखो इतना विश्वास है श्रीमद् भागवत के ऊपर उनके, लेके बैठे हैं। तो उनको बहलाने के लिए सुमति मुरार जी क्या कहती हैं, अच्छा कोई बात नहीं, आप शाम को आया कीजिए हमारे बगीचे में बैठकर हमको श्रीमद् भागवतम सुनाया कीजिए। तो खुद लिखा हुआ जो तात्पर्य है वो बैठकर रोज शाम को सुमति मुरार जी को वो सुना रहे हैं और रोज एंड में बोल रहे हैं मुझे अमेरिका जाना है। आगरा गए एक बार, उनके मित्र हैं मथुरा प्रसाद अग्रवाल, उनको अक्सर मिलते थे वो, एक बार मिलने गए तो वो मथुरा प्रसाद जी बोल रहे हैं मेरा पुत्र जो है बिल्कुल बेकार गया, वो आई लॉस्ट माई सन। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका गया। अभी आजकल के लोग जो हमारे जैसे होते हैं, हमारा बच्चा अगर जाएगा अमेरिका में तो हम लोग तो फूल बांटेंगे, सबको पेड़े बांटेंगे, माई सन इज स्टडिंग इन अमेरिका मिशिगन यूनिवर्सिटी, कितने गर्व से कहेंगे। लेकिन मथुरा प्रसाद जी बोल रहे हैं कि मेरा लड़का जो है वो मराठी में क्या बोलते हैं, वाया गेला, बर्बाद हो गया मेरा बच्चा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जाके उस कल्चर में बस गया। और भी एक उसकी बर्बादी का कारण क्या, वो एक अमरीकी मड्डम ने उसको फंसा लिया, विवाह कर लिया उससे, बहुत दुखी थे बेचारे वो। लेकिन प्रभुपाद जी अपने विचार में स्थिर थे, वो कहते हैं कि अरे आपके लड़के ने अमरीकन लड़के शादी किया तो फिर मुझे वो अमरीका के लिए वीजा भेज सकते हैं। उनके मन जो है अपने गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया एक है, उनका मन जो है गुरु जी की आज्ञा पर स्थिर है एकदम। वो सोच रहे अमेरिका कैसे जाएं, तो उस समय मथुरा प्रसाद जी उनको उत्तर देते नहीं, कुछ कोई जवाब नहीं देते हैं, ऐसे बात को वहीं तक पूछ जाती है। कई महीने के बाद में उनको पत्र आता है अमेरिकन एम्बेसी से, यू हैव गॉट अ इन्विटेशन फ्रॉम अमेरिका, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, फ्रॉम अ लेडी कॉल्ड सैली अग्रवाल। ये सैली अग्रवाल कौन है? उनके लड़के की, गोपाल अग्रवाल की पत्नी है। फिर वो जाते हैं, फिर जाते हैं श्रीमती महाराज जी के पास, देखो मेरे को अभी निमंत्रण भी आया है, बहुत गिड़गिड़ाते हैं। और उस समय तक वो और धन इकट्ठा करके श्रीमद भागवत के प्रथम स्कंद के 3 खंड के कई कॉपीज, बॉक्स के बॉक्स, क्रेट्स और क्रेट्स ऑर्डर करते हैं, बहुत सारे क्रेट्स खुद के साथ में जब गए थे वो। एनीवे आई टेल यू फर्स्ट हाउ वी वेंट। श्रीमती महाराज जी कहते ठीक है आपकी जिद है तो मैं आपको भेजती हूँ, और कार्गो शिप में उनको पास देती हूँ। कार्गो शिप जो कई महीने चलता है, हाँ नॉट लाइक दैट। तो बेचारे प्रभुपाद जी, खुद के पास में क्या था उनके, एक छतरी थी, एक टाइपराइटर था, श्रीमद भागवत का बॉक्सेस सब लगेज में डाला हुआ था, और 40 रुपये मतलब उस समय के $5, और कुछ आलू के बक्स, एक थैली थे आलू की, पता नहीं वहाँ पर खाने को मिलेगा तो आलू पका के खाएंगे और एक 4 टीयर का डब्बा था उनका, उसको कुकर भी के रूप में इस्तेमाल करते थे, वो नीचे अग्नि में रखते थे तो चारों में राइस दाल ऐसे पकाते थे, खुद अपने हाथ से बनाते थे। तो कोई संकट आया तो भी कोई बात नहीं, अपने कुकर में खाना बनाएंगे, थोड़े दिन के आलू में संभाल लेंगे, बाद में देखेंगे क्या मिलता है। खुद के लिए कुछ नहीं, लेकिन बक्से से बक्से भरकर श्रीमद भागवत के जो कॉपीज लेके जाते हैं, और खत भेज देते हैं उसको सैली अग्रवाल, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। उस जमाने में 30 दिन कम से कम लगते थे यहाँ से खत पहुँचने में अमेरिका में। हमारे बच्चों ने मुझे याद है, अमेरिका फॉरेन कंट्री मतलब 1 मंथ। तो यहाँ पर बोट में जब बैठते हैं सुमति मोरार जी के सिंधिया शिपिंग कॉरपोरेशन में बैठते हैं, तभी वो खत भेजते हैं, और जब वो बॉस्टन हार्बर में पहुँचते हैं तो उसको खत मिल जाता है उसी समय पर, कि मैं यहाँ पर बोट में बैठ गया हूँ। वो खबर को कब मिलती है? जब वो बोट से उतरने वाले और साथ एक फोटो भेजते हैं अपना, एकदम गंभीर संन्यास अवस्था में, गंभीर फोटो, एकदम चेहरे में एकदम गंभीरता है उनके। मैं आपको फोटो भी भेज रहा हूँ क्योंकि आप मुझे पहचान सके हार्बर में जब मैं आऊँगा तभी। तो सैली अग्रवाल फोन करती है अपने पति को, गोपाल जी अरे ही इज कमिंग। उनको विश्वास नहीं था क्योंकि उनके पिताजी ने कई लोगों का ऐसा दरख्वास्त किया था कि इनको भेजो, कोई अब तक अमेरिका नहीं आया था, और पहली बार खत आता है कि मैं आ रहा हूँ और अभी आ रहा हूँ, मतलब अभी मैं पहुँच गया हूँ, ऐसे उनको मालूम पड़ता है कि 1 महीने पहले निकल गया था वो खत, 1 महीने बाद पहुँचता है। तो वो बहुत दूर था बॉस्टन हार्बर से, क्या नाम उसका भूल गया मैं उसको, जहाँ पर वो रहते थे, बटलर पेंसिल्वेनिया, थोड़ा सा वो न्यूयॉर्क से दूर है हार्बर से। तो वो एक बस को भेजते हैं और उनके सारे बक्से उतार देते हैं, और वो रहता है ट्रांसपोर्ट में कई दिन तक, 1 महीने तक वो सैली अग्रवाल के घर में रहते हैं, और 1 महीने के बाद में उनका शिफ्टिंग होता है घर का, नए घर में जाते हैं तो उनके पास वो जगह नहीं है। तो 1 महीने के बाद शिफ्टिंग होने के समय पर ये बड़े बड़े बक्से आते हैं श्रीमद भागवत की तो कुछ दिन रखते हैं, अभी सब शिफ्टिंग का समय आता है, कहते हैं प्रभुपाद जी ये हमारे नए घर में इसको जगह नहीं, प्लीज़ सर उसको कहीं और रख लीजिए। तो बेचारे खुद को रहने की जगह नहीं, क्योंकि 1 महीने के बाद जो शिफ्टिंग करते हैं तो उनको भी घर छोड़ना पड़ता है। सैली अग्रवाल के घर में फ्रिज में मांस हुआ करता था, क्योंकि सैली अग्रवाल गोपाल अग्रवाल दोनों मांस खाते थे, अंडे खाते थे, इसलिए वो अपने हाथ से भोजन बनाते थे। और कई बार वो सैली अग्रवाल ने कहा है कि वो अपने हाथ से हमारे लिए खाना बनाते थे, तो एवरी इवनिंग मस्ट बी वुड बी अ फीस्ट, वो खुद बनाते थे हमको खिलाते थे। फिर वो किसी को विनती करके न्यूयॉर्क में किसी के गैरेज में वो किताबों को रखने की व्यवस्था करते। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो संदेश था उनको बद्ध जीवों तक पहुंचाना था, इसलिए अकेला बूढ़ा व्यक्ति 70 साल का बोट में, जिनको 2 हार्ट अटैक आए हैं, कोई हमारे जैसा व्यक्ति होता तो उतरते ही वापस लौट के आता था, रिटर्न जर्नी बैक, हमको याद नहीं रहना है हाउ टू मैनेज दिस सिचुएशन ऑफ बैड हेल्थ। तो उसके पश्चात ये जो उन्होंने 3 खंड के 1 स्कंद का अनुवाद किया था, केवल उसको ही, वही ग्रंथ इस्कॉन में थे उस समय, और कोई पुस्तक का अनुवाद नहीं हुआ था, ओनली 3 बुक्स। और उसको पढ़कर ऐसे ऐसे भक्त बने कि 6-6 महीने में प्रभुपाद जी ने उनको लंदन भेजा, जर्मनी भेजा, स्विट्जरलैंड भेजा, अमेरिका के अलग राज्यों में भेजा, एक एक सेंटर खोलने के लिए। 6-6 महीने के जो भक्त हैं वो पहले मांसाहार, व्यभिचार, नशा, ड्रग्स सब करते थे, वो 6 महीने का उनका हृदय में इतना परिवर्तन आया कि प्रभुपाद जी की दीक्षा लेकर, प्रभुपाद जी के आदेश से उन्होंने मतलब इस देश की कन्या, इस देश का पुत्र, उन्होंने विवाह भी करवाया उनका वैष्णव पद्धति से, और जाओ अभी इंग्लैंड में जाओ वहां प्रचार करो, ऐसे करके उन्होंने भेज दिया उनको। ना पैसा है, ना कोई साधन है, ना कोई कॉन्टैक्ट है, ना जगह है, ना कुछ नहीं है, गो एंड स्टार्ट प्रीचिंग। लेकिन श्रीमद भागवत के प्रथम खंड के केवल उसके अध्ययन करने से वो भक्त इतने स्ट्रांग बने कि श्याम सुंदर जी और मालती माता जी जो पहले पहले उनके भक्त हैं, उनकी कहानी भी आपको बतानी है क्योंकि जगन्नाथपुर से उनका संबंध है उस कहानी का। तो श्याम सुंदर जी और मालती का विवाह होता है और वो जाते हैं इंग्लैंड में, कभी जिंदगी में इंग्लैंड में नहीं गए थे, पहली बार जाते हैं, हाथ में छोटी सी कन्या है सरस्वती, वो जाके सीधा बीटल्स को मिलते हैं, जॉर्ज हैरिसन को, उसका अभी देहांत हो गया ना कुछ साल पहले। कैसे मिलते हैं? छुप छुप कर उनको उसके घर में एंट्री लेते हैं, दीवार से कूद कर, फिर जाओ जो उनको मिलते हैं, जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन सब उनके मिल, चार थे बीटल्स, वो दो तो नशे में ही ख़त्म हो गए और दो स्पिरिचुअल बने, उसमें जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद के अनुयायी बने। क्यों? केवल कुछ महीने को ग्रंथों का अध्ययन करके श्याम सुंदर जी ने उनको अच्छी तरह समझाया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आज जो हम कृष्ण किताब पढ़ते हैं ना, कृष्ण किताब, प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद का अनुवाद करने के पश्चात सीधे दशम स्कंद का अनुवाद किया, क्योंकि उनको गारंटी नहीं थी कितने साल जिएंगे, और कृष्ण चरित्र जो है उनको प्रकाशित करने की उनकी बहुत इच्छा थी, इसलिए उन्हें गोष्ठी रूप में, कथा रूप में दशम स्कंद का अनुवाद किया उन्होंने। और वो बनाने के बाद स्क्रिप्ट रेडी हो गया तो श्याम सुंदर को प्रभुपाद जी कहते जाओ जॉर्ज से इसका पैसा मांगो। तो श्याम सुंदर ने कभी जॉर्ज से पैसा नहीं मांगे थे, केवल प्रेम संबंध में उनको प्रचार करते थे, गुरु जी का आदेश था, तो गए उनको मिलने के लिए और डिनर का इंतजाम था, बहुत सारी यहाँ वहाँ की बातें हुई, फिर डिनर पहले स्टार्टर आया तो स्टार्टर लिया, संकोच कर रहे कभी बोले, कब कैसे बोले, कैसे बोले, कैसे बोले, अभी तक तो इतने महीने में कभी मांगा नहीं कुछ उनसे। फिर डिनर आता है, फिर डिनर भी खा के होता है, यहाँ वहाँ की गप्पे खत्म हो जाती है, डिनर के बाद में डेजर्ट भी आता है वो भी खत्म हो जाता है, फिर जाने का समय आता है तो भी इनको बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, कैसे कहें, लेकिन कहना तो है क्योंकि गुरु जी का आदेश है, गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी आए क्या। तो जाने के समय दरवाजे में जाते हैं तभी बोले जॉर्ज मुझे जरा थोड़ी सी बात करनी है आपसे, हाँ बैठो बैठो। ऐसा है कि हमारे प्रभुपाद जी ने, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन आपको पता नहीं 1960s में बहुत फेमस व्यक्ति थे, मतलब इतनी सो फेमस, आजकल के जो थे माइकल जैक्सन उसके सामने कुछ नहीं थे, इतने वो अमीर थे और इतने फेमस थे। और जॉर्ज हैरिसन ने कई हरे कृष्णा के कंपोजिशन भी किए हैं, बहुत सारे एल्बम उनके प्रकाशित भी हुए हैं। तो वो कहते हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है कथा रूप में और कृष्ण नाम की किताब छपवानी है, क्या आप उनको डोनेशन दे सकते हैं? तो एकदम चेहरा गिर जाता है जॉर्ज का, अरे क्योंकि जॉर्ज हैरिसन इतना फेमस व्यक्ति था, दुनिया के जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स थे उनके साथ संपर्क करने का कोशिश करते थे, और संपर्क होता है जो जैसे होता है तुरंत सारे पेपर में उनका फोटो देते थे जस्ट टू क्रिएट पब्लिसिटी एंड कौनो। तो जॉर्ज बहुत नाराज थे ऐसे लोगों से, इसलिए शुरू से श्याम सुंदर ने कभी उनको पेपर में न्यूज़ कभी कुछ दिया नहीं उनके बारे में। प्रभुपाद जी के साथ में उन्होंने घंटों घंटों बातचीत किया है लेकिन कभी किसी मैगजीन में या पेपर में या टीवी में कहीं उनका न्यूज़ नहीं आया, ऐसा स्ट्रैटेजी कि वी डोंट वांट टू हैव पब्लिसिटी विद यू। तो आखिर में जब श्याम सुंदर जी बोलते हैं कि प्लीज़ कैन यू डोनेट फॉर दिस, तो उनका चेहरा गिर जाता है, अरे यू ऑल्सो, आप भी वैसे ही निकले। जैसे सोच रहे हैं मन में ऐसे, तो अचानक बहुत जोर से बिजली गिरती है, जोरदार बिजली, झाड़ बिट जलते हैं ना बिजली से, ऐसे जब बिजली गिरती है और सब लाइट ऑफ हो जाते हैं और आकाश में गड़गड़ाहट होती है बादलों की और बहुत भयंकर आवाज होके एकदम अंधेरा हो जाता है, रात का समय वैसे भी है और 15 मिनट ऐसे ही अंधेरा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ना श्याम सुंदर जी बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं, दोनों अंधेरे में बैठे हुए हैं और क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे भ्रमिक अवस्था में बैठे हुए हैं। और कुछ देर बाद में लाइट आती है तो वो भी बैठे हैं, देख रहे हैं श्याम सुंदर जॉर्ज को, देख रहे हैं जॉर्ज श्याम सुंदर को देख रहे हैं। तो जॉर्ज कहते हैं आफ्टर ऑल दिस एक्सपीरियंस हाउ कैन आई से नो टू यू, वो कहते हैं कि जरूर ये जो घटना बीच में हुई आपने इतने संकोच से मुझे पूछा और जो भी घटना हुई मुझे ऐसा धीरे हृदय में एहसास हो रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो 1960s में उन्होंने $19,000 दिया प्रभुपाद जी को और दशम स्कंद जो श्रीमद् भागवत का है वो कृष्ण के रूप में, कृष्ण का नाम दिया उसको, कृष्ण, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ऐसा उस किताब का नाम है, वो प्रकाशित किया। और उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने हर रोज रात को, वो सोते थे 8 बजे 9 बजे और रात को 11 बजे उठते थे, कभी 1 बजे उठते थे, और बीच रात में जब सब भक्त लोग सो रहे हैं, सब दुनिया सो रही है, तो वो श्रीमद् भागवत के ग्रंथों को अनुवाद करते थे, बचे हुए ग्रंथ का। आप अगर देखेंगे ना, उनकी एक फिल्म है, एक्चुअली जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ दिया उन्होंने वृंदावन में, वो फुल इवेंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, हाउ ही पास्ड अवे, आखिरी दिन जो उनके हैं और जब उन्हें शरीर छोड़ा, वो पूरी फिल्म अवेलेबल है, बहुत हृदय द्रावक फिल्म है वो, कभी देख सकते हैं आप, मौका आएगा तो प्रभुपाद जी 3 महीने तक उन्होंने उपवास किया था, 3 महीने तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। ऐसे होता है, जो हॉस्पिस में काम करते हैं उनको पता है कि मरणासन्न अवस्था में आखिर में जब एक्टिव डाइंग प्रोसेस चालू होता है तो आदमी फिर खाना पीना छोड़ देता है अपने आप ही। हमारी दादी भी थी, माँ की माँ, वो भी आखिरी 2 महीने उन्होंने कुछ खाया नहीं, ऐसे ही वो रही और शरीर छोड़ दिया उसने। तो वैसी अवस्था में प्रभुपाद थे, 3 महीने तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था, बिल्कुल खड्डी और पसली और चमड़ी रह गई थी उनकी। वो अवस्था में उनका हाथ भी उठाना है तो भक्त लोग उसको हाथ उठाते थे और कहीं रखते थे बाजू में उसको, मतलब कपड़ा बदली करने लिए खुद हाथ उठाते थे, उनके शरीर में शक्ति नहीं थी अपने हाथ को उंगली को हिलाने की। ऐसी अवस्था में भी प्रभुपाद जी के मुंह के सामने डिक्टाफोन रखकर भक्त लोग प्रभुपाद जी से श्रीमद् भागवत का अनुवाद कराते थे, ऐसी फिल्म है उसके अंदर, क्योंकि प्रभुपाद जी का अनुवाद करने का एक स्टाइल था, वो डिक्टाफोन लेके बैठते थे और उसमें बोलते थे, श्लोक बोलते थे, उसका वर्ड टू वर्ड अनुवाद करते थे और उसका एक लाइन में अनुवाद करते थे और तात्पर्य लिखते थे, सारा वो बोलते थे मुंह से, और उस डिक्टाफोन को सुनकर हेडफोन लगाकर उसका भक्त जो, उनके भक्त जो थे, वो टाइप करके उनका क्या कहते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन करते थे उसका। तो ऐसे कोई भक्त उनके मुंह पर ऐसे माइक्रोफोन पकड़ा हुआ है डिक्टाफोन और प्रभुपाद जी उसका अनुवाद कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, मरते दम तक आखिरी सांस तक उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया है। और जो आखिरी अध्याय उन्होंने जो अनुवाद किया है वो दशम स्कंद में, जब ब्रह्मा जी बछड़ों को चोरी करते हैं कृष्ण के, हाँ, जमुना किनारे में बैठे हैं आनंद ले रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को संशय होता है कि अगासुर का वध किसने किया, इस बालक ने किया, और भगवान कहते हैं इस बालक को, तो वो कसौटी करने के लिए आते हैं और भगवान के पहले बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं। उस लीला तक प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने डेथ बेड पर बैठकर उसको अनुवाद किया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। हाँ,
हरे कृष्ण, जरा आई जरा प्लीज
कम क्विकली। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर दिखाने के लिए लाया है श्रीमद् भागवत, ये प्रथम स्कंद है, कौन सी भाषा में, ये शायद हिंदी भाषा में, ठीक है। सबसे पहले जब ये ग्रंथ प्रकाशित हुए थे तो वो 30 खंड में प्रकाशित हुए थे, प्रथम स्कंद के 3 खंड, द्वितीय के 2 खंड, फिर तृतीय के 3 खंड, फिर 5, 4, 7 खंड, ऐसे वो करके 30 खंड थे वो। कभी नया प्रकाशन जो हुआ है उसमें एक एक स्कंद का एक एक वॉल्यूम प्रस्तुत है, इस तरह से 12 स्कंद के 18 वॉल्यूम प्रस्तुत है, दशम स्कंद के कम से कम 4 वॉल्यूम है और कुछ स्कंद के 2 वॉल्यूम है, ऐसे मिलकर 12 स्कंद के 18 वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं। और ये है इंग्लिश भाषा में जो ओरिजिनल प्रभुपाद ने लिखा था, जिसको वो विदेश लेके गए और आखिर तक उन्होंने दशम स्कंद तक पहुँचे वो, और ब्रह्मा मोहन लीला के पश्चात का जो अनुवाद है वो उनके 4 शिष्यों ने, सन्यासी शिष्यों ने मिलकर उसको पूरा किया है, क्योंकि दशम स्कंद का कोई हिस्सा बाकी था, उसके बाद दशम स्कंद को पूरा किया उन्होंने, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कथा रूप में प्रभुपाद ने लिखा था उसको, लेकिन श्लोक के रूप में, श्लोक श्लोक का अनुवाद और उसका तात्पर्य लिखना लिखा नहीं था, दशम स्कंद पूरा किया शिष्यों ने, फिर 11वां और 12वां स्कंद भी पूरा किया। इस तरह से 12 स्कंद का श्रीमद् भागवत जो है इस्कान संस्था में अभी अवेलेबल है, और इसी इंग्लिश अनुवाद का 55 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, दिस सेम श्रीमद् भागवतम इज इनटू अवेलेबल इनटू 55 लैंग्वेजेस। हाँ, ये कितनी गौरव की बात है हमारे लिए, हमारा शास्त्र है ये, भारत भूमि का एक गौरव, एक नगीना है ये, अलंकार है भारत भूमि का, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम। ये प्रभुपाद जी की प्रेरणा से और कृपा से जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, जिस जिस देश में प्रचार किया, उस भाषा में उनके शिष्यों ने उसको अनुवादित किया। हाँ, जब मैं पहले सबसे इस्कॉन में गया था, एनीवे, ये इंग्लिश का है और ये महाराष्ट्र मराठी भाषा में भी उपलब्ध है, गुजराती में भी उपलब्ध है, कन्नड़ में भी है, आंध्र में, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है, और भारत की प्रमुख 28 भाषा में तो है ही, उड़िया में है, बांग्ला में है, और विश्व में 55 भाषा में उपलब्ध है। और अगर ये हमारे पास नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, जस्ट इमेजिन। हाँ, रशियन भाषा में अवेलेबल है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा और गर्व भी होगा, अरेबिक भाषा में भी श्रीमद् भागवत का अनुवाद हो रहा है, भगवत गीता अरेबिक भाषा में प्रभुपाद जी ने अनुवादित करके लिए। कुवैत के राजा की जो कन्या है वो प्रभुपाद जी की शिष्य बनी हुई है। गिरिराज महाराज जो प्रभुपाद जी के प्रमुख शिष्य हैं, अभी भी जीवित हैं, वो कैलिफोर्निया में रहते हैं, उनकी शिष्या जो है वो कुवैत के मुस्लिम राजा की कन्या है। एंड आई हैव विजिटेड, आई मेट हर इन पुणे ऑल्सो। तो ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं कि जो लोग इस सब को कृष्ण का के भी जानते नहीं वो लोग कृष्ण के भक्त बने हैं, और ना केवल भक्त बने हैं, संन्यास लेकर भारत में आकर हमको प्रचार करते हैं। इसलिए मैंने कहा, जब मैं पहले मंदिर में गया था मुझे बहुत शर्म आई उसके अंदर, जब मैं पहले बार गया था। क्यों शर्म आई? क्योंकि मेरा जन्म जो है गौड़ सारस्वत ब्राह्मण के घर में हुआ है। हाँ, इसी जाति में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का जन्म हुआ है। वो भी कर्नाटकी ब्राह्मण थे, बचपन में कर्नाटक में थे, फिर वो बांग्ला में गए। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो छह गोस्वामी है, इन्होंने मिलकर सारे जो प्रेम शास्त्र का प्रचार जो है प्रकाशित किया है चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में। और ब्राह्मण का धर्म क्या होता है? पठन पाठना यजन याजना, खुद पढ़ना, लोगों को पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ये उनका मेन कार्य है। और नौ उनके लक्षण भगवदगीता में दिए गए हैं, समस्त तमस्त तपस्चम शांति मार्जम एवच। हाँ, ये सब नौ ब्राह्मण के गुण दिए गए हैं, वो अगर है तो उस व्यक्ति को ब्राह्मण कह सकते हैं। हमारे अंदर तो कुछ गुण भी नहीं थे वो, और हम लोग नॉनवेज भी खाते थे। मंदिर में जब गए तो एक फॉरेनर व्यक्ति है, ब्रह्मचारी बना हुआ है, पीएचडी है अमेरिका से, हाँ, फ्रॉम द प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी, और वो व्यक्ति सर मुंडवाकर ब्रह्मचारी के वस्त्र पहनकर हमें भगवदगीता का प्रवचन दे रहा है। मुझे लगा क्या लानत है हमारे ऊपर, हाँ, शर्म आना चाहिए हमको, हमें उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन वो खुद पहले तो अपने जीवन पद्धति को बदल कर इस जीवन पद्धति को स्वीकार किया उन्होंने, न केवल वहीं पर रुके। हो सकता है कि अपना वहीं रुको, अपने काम करते रहो, लेकिन भक्त का जीवन अपनाते रहो, नहीं, वो जीवन भी छोड़ दिया उन्होंने, भारत में आए अपने कल्चर को छोड़कर यहाँ के कल्चर को अपनाने के लिए। यहाँ पर भी रुके नहीं, विवाह विवाह सब छोड़कर, परिवार छोड़कर ब्रह्मचारी बने, और मंदिर में ब्रह्मचारी के रूप में रहकर प्रचार कर रहे हैं। वो किसको प्रचार कर रहे हैं? भारत के कर्नाटक के ब्राह्मण को। मुझे लगा कि ये सब बदलना चाहिए। हाँ, ये सब जो संकोच, मुझे शर्म जो लग रही है वो खत्म होनी चाहिए। और उसी प्रेरणा से मैं फिर आगे इसमें भाग लिया, मैंने इसमें सहभाग लिया हरे कृष्ण आंदोलन में। और आज मुझे गर्व है इस बात का कि प्रभुपाद जी ने हमारा ही धन जो है वो सब विश्व में जाकर बांटा। जब अमेरिका गए तो यहाँ के लोग केवल धन कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर इंद्रिय भोग के साधन जो है उसको एंजॉय करने के लिए वहाँ जाते हैं, लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड जो है वो उसको अटैच हो जाते हैं बहुत, वहाँ पर वापस नहीं आते हैं। यहाँ से जाते हैं कि मैं दो साल के लिए पढ़ने को जाऊँगा, और ज़िंदगी भर वहीं रहते हैं, वहीं पर अपना बसा लेते हैं, और बहुत सारे बहाने बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है, वहाँ रहने के बाद में विराट के ग्राउंड में कौन चढ़ेगा, वहाँ के रहने के बाद में यहाँ गंदगी में रस्ते में कौन चलेगा, हाँ, सब कुछ बताते हैं, वहीं रहते हैं। यानी कि यहाँ के लोग वहाँ के इंद्रिय भोग को मोहित होकर वहाँ जाकर रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप जो भूल चुके हैं उसके आपको याद दिलाने के लिए और आपको देने के लिए आया हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी ने कांटे और चमचे से खाने वाले लोगों को हाथ से खाना सिखाया, टेबल पर बैठकर खाने वालों को जमीन पर बैठकर पलटी मार के खाने को सिखाया, हाँ, प्लेट में खाने वालों को केले के पत्ते और पत्तल पे खाने को सिखाया उन्होंने। यानी कि अपना कल्चर उनको दिया। वो क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, कोई बुद्ध है, कोई अलग अलग धर्म के लोग हैं, उन्होंने उनको धर्मांतर नहीं करवाया, उन्होंने धर्म का रहस्य उनको समझाया और भगवान की भक्ति क्या होती है, उस परम पुरुष के साथ में संबंध कैसे होना चाहिए वो उनको सिखाया। और वो गर्व से कहते थे कि ब्रिटिश लोगों ने हम पर राज किया, हाँ, हम लोगों को ऐसा, हमारा जो स्थिति है आत्मा की, इतनी अवनत स्थिति हमारी है, फॉलन कंडीशन ऑफ आवर सोल, कि हम लोग उनके सारे ऐश्वर्य से और चमड़ी से इतने प्रभावित हैं। तो उन्होंने हम पर 150 साल राज्य किया, और जो मुसलमानों ने हमारा नुकसान नहीं किया, उन्होंने ऐसा, ब्रिटिश लोगों ने अपना सारा संस्कृति को हनन कर लिया पूरा, अपने कपड़े भी उतार लिए, सब कुछ खाना पीना सब खत्म कर दिया, गायों को खत्म कर दिया, सारे अपने प्रोडक्ट्स जो है, चाय को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, सारी गलत चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और पूरा अपना कल्चर का नाश कर दिया उन्होंने। और 150 साल में अंग्रेजों ने भी तो नाश नहीं किया, वो 20 साल में अमेरिकन टीवी ने किया। हाँ, गाँव गाँव के अंदर भी खाने को अन्न नहीं है, लेकिन टीवी का कनेक्शन घर पे है, और वहाँ पर जो चल रहा है गंदगी सब हमारे घर पे आई हुई है, विचारों में और कहने में और बोलने में और चलने में भी। तो प्रभुपाद जी कहते थे, जब इंग्लैंड में उन्होंने मंदिर खोला तो इंग्लैंड में ब्रिटिश लोग भक्त बने, और ब्रिटिश लोगों ने उनको दीक्षा दिया तो कुछ ब्रह्मचारी बने, कुछ सन्यासी बने उसमें से। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि देखो, इन्होंने हमारे भारत पर 150 साल राज किया, आज मेरा सेवक बनकर मेरी सेवा कर रहे हैं। लोकल नेटिव ब्रिटिश पर्सन इज सर्विंग प्रभुपाद एज ए हम्बल सर्वेंट, एज ए डिसाइपल। तो मजाक में कहते थे, कहने का तात्पर्य यह है कि जो सब कुछ भूल गए हैं उनको प्रभुपाद जी ने याद दिलाया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, नहीं तो ये लोग यहाँ पर क्यों आएंगे भारत में। विदेशी लोग तिलक लगाकर हमारे जैसा धोती कुर्ता पहनकर नाच रहे हैं कीर्तन में, क्या जरूरत है उनको? उनके पास जो है वो देखकर हम लोग लालायित हो रहे हैं, भाग रहे हैं उनके पीछे, और वो जो उनके पास है वो सब छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास जो है लेने के लिए। मतलब जर्नी कैसी है, हम उनको देख रहे हैं वो हमको देख रहे हैं, और हम उनके पीछे भाग रहे हैं वो हमारे से छोड़ के यहाँ से पीछे से हमारे पास आ रहे हैं, हम उनके भोग के पीछे भाग रहे हैं वो हमारे भक्ति का रहस्य को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो कैसा है, प्रभुपाद जानते थे कि भारतीय लोगों की मेंटेलिटी क्या है। वो अमेरिकन लोग अगर करेंगे तो फिर हमारे लोग भी करेंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अमेरिका जाऊंगा, वहां उनके लोगों को भक्त बनाऊंगा, और भक्त बनाकर उनको यहाँ ले आऊंगा, तब उनको देखकर यहाँ के लोग भक्त बनेंगे, और मैं उसका प्रमाण हूँ। आई एम द प्रूफ ऑफ दैट। तो आप समझ सकते हैं हमारी प्रवृत्ति क्या है, वो करेंगे तो फॉलो करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने 30 साल तक यहाँ प्रचार करने का प्रयास किया, वही व्यक्ति थे वो, वही मैसेज था उनका। 30 साल तक उनका कोई अनुयायी नहीं बना। जैसे अमेरिका गए, कुछ साल वहाँ पर रहे, बहुत देशों में मंदिर बनाए उन्होंने, और कई कुछ साल के अंदर ही कई अमेरिकन लोग सन्यासी बन गए, और सर मुंडवा कर विवाह वस्त्र पहनकर जब हवाई जहाज से उतरे तो प्रभुपाद जी को धराधड़ 100 लोगों ने प्रणाम किया वहाँ पर। तब उसके पहले प्रणाम नहीं किया था, क्योंकि वो देखते हैं अभी ग्रैंडर बढ़ गया उनका, ऐश्वर्य बढ़ गया है, इतने सारे गोरे लोग नाच रहे हैं उनके पीछे, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो भाई बड़ा महात्मा आदमी है, तो फिर उनको सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो फिर जाके भक्त बने। ये हमारी बौद्धिक लाचारी है। हाँ, दिस इज दी व्हाट हाउ टू से इन इंग्लिश, दिस इज कंडेमनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, बौद्धिक गुलामगिरी है ये, क्योंकि बुद्धि से हम उनके गुलाम हो गए उनके कल्चर के, और उसको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मैं यात्रा में कहता हूँ कि वेस्टर्न कपड़े पहन के आप बच्चों को और अपने आप को यात्रा में मत लाओ, बिकॉज आवर कल्चर इज समथिंग एल्स। और हम लोग यात्रा में भी कोशिश करते हैं कि हाफ पैंट बरमुडा और टी शर्ट पहन के आ जाएं, ये हमारा कल्चर नहीं है। आवर कल्चर इज वैदिक, वी हैव टू गो बैक टू वैदिक्स। कुछ दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में व्यक्ति आया था, स्टीफन नैप नाम का, उसका नाम अभी नंदनंदन दास है, वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। उन्होंने इतना एक्सटेंसिव रिसर्च किया है इसके ऊपर कि भारत की संस्कृति क्या है, इतने इतने बड़े कई ग्रंथ लिखे उन्होंने भारत की संस्कृति के ऊपर। और अभी वो आए थे, और उनको जो डॉक्टर सुमैया है, सुमैया कॉलेज जो है ना विद्या विहार में, उनके जो प्रमुख है जो कट्टर आरएसएस के फॉलोअर हैं, उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया उनके रिसर्च को देखते हुए। और पूरे भारत में जाकर उन्होंने जगह जगह जाकर दिन में 4-4 लेक्चर उन्होंने दिए, 50-60 साल की व्यक्ति है वो, लेकिन डेली 4 लेक्चर्स ही गेव इन वेरियस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। और सबको यही बता रहे हैं कि आप लोगों की संस्कृति क्या है, प्लीज प्लीज टेक योर ओन कल्चर एंड फॉलो इट योर सेल्फ एंड टेल अदर्स टू फॉलो देयर ऑल्सो। ऐसे कितनी विनती कर रहे थे हमारे हॉस्पिटल में आके, वो कह रहे कि आपको संक्षेप में लेक्चर दे रहा हूँ, अगर प्राइवेट में बैठेंगे आपको मैं घंटों घंटों समझाऊंगा कि आपके कल्चर को कैसे हनन किया गया, ब्रिटिशों ने, मैक्स मुलर ने कैसे रिसर्च करके यहाँ के जो पावर है उसको ढूंढ के निकाला कि यहाँ का शक्ति क्या है। तो कहते हैं कि गाय की रक्षा यहाँ की शक्ति है, गाय इनका जानवर ऐसा है कि गाय के ऊपर पूरा कल्चर घूमता है इनका, गोरक्षा और कृषि मतलब खेती करना। तो उन्होंने रिसर्च किया, इंग्लैंड ने उनको स्पॉन्सर किया, ब्राइब भी दिया उनको, बहुत पैसा दिया, तो संस्कृत सीखा बड़े बड़े विद्यापीठों में जाकर, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन ढूंढ के क्या निकाला, भक्ति का सार नहीं निकाला कि कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है। और फिर राजा को रानी को मैसेज भेजा इंग्लैंड में कि अगर इनकी संस्कृति को आपको छेदना है तो पहले गाय का नष्ट करो। इसलिए मैक्स मुलर के आदेश से इंग्लैंड की रानी ने भारत में लाखों लाखों गायों की हत्या कर दी, और फिर वो एकदम गरीब हो गए ना, गाय का दूध नहीं है, कुछ नहीं, मक्खन नहीं है, कुछ नहीं है, गाय के जो बाकी गोबर है, गोमूत्र है, इसको जो सब खत्म हो गया। बाद में कहा ये प्रोडक्ट ले लो हमारा, चाय पियो, ये करो वो करो। इस तरह से बहुत सोच समझ कर, बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करके, राक्षसी बुद्धि है ये एक्चुअली, पूरा बुद्धि का इस्तेमाल करके रिसर्च करके हमारे मूल तक गए वो, और फिर वो निर्णय लिया कि इसके मूल को काट देना है। जैसे मूल को काट दिया पूरा पेड़ गिर गया हमारा, फिर कुछ नहीं बचा, तो उसने अपना पेड़ लगाया वहाँ पर, बोले इस पेड़ के फल खाओ, अभी आपका पेड़ काट दिया गया है, अभी कुछ बचा नहीं यहाँ पर, हमारा पेड़ का फल खाओ। उसका आदि बना दिया। भारत में चाय नहीं थी उसके पहले, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये हमारा कल्चर है, श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत अमलम पुराणम प्रेम पुमार्तो महान। तो आपको मैं विनती करता हूँ कि दिसंबर के मैराथन में हमारे मंदिर में श्रीमद् भागवत डिस्काउंट में मिलता है। अभी तक दिसंबर आया नहीं है, लेकिन मैं अपनी यात्रा के लिए विशेष रूप से ये आपसे आज ऑर्डर लेना चाहता हूँ एडवांस के रूप में, ताकि आपको जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश जो भागवतम सेट है 18 खंडों का, उसका 5000 रुपये कीमत होती है आम तौर पर, लेकिन दिसंबर के महीने में हर चीज़ पे किताबों पर 20% डिस्काउंट मिलता है। तो 5000 का भागवत जो है वो 3500 में मिलता है, वो अंग्रेजी का है। ओके, और हिंदी का कितना है? 3000 रुपये हिंदी का कीमत है, लेकिन मैराथन में दिसंबर में वो 2500 में मिलता है। और मराठी के जो है अभी श्रीमद् भागवतम का अनुवाद अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कुछ कुछ ग्रंथ मैडम कुलकर्णी में लिए हैं, जैसे ऐसे अलग अलग खंड आते हैं वो भी मिलते जाएंगे। तो मैं आपको सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग श्रीमद् भागवत की ऑर्डर्स बुक कीजिए, और हमको आप हमको मैं आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में उसको डिलीवर करूँगा जहाँ पर भी आप हैं। ये सब क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि ये पाकर जो हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, परिवर्तन ऐसा है कि इस विश्व से हमको भगवत धाम में ले जाएगा। नॉट अ सिंपल परिवर्तन, हाँ, धन की बढ़ोतरी हो गई है या बहुत अच्छा पद प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छे पोस्ट पे बैठे हैं, ये परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन ऐसा है कि दुनिया में लगा हुआ जो एंकर है, नांगर है, उसको उखाड़ कर ये भगवान के धाम में ले जाएगा। ये परिवर्तन है। और ये परिवर्तन, जो परिवर्तन क्रांति आज तक हुई है, फ्रेंच राजतांत्रिक हुई है, जो राजतांत्रिक हुई आज तक, वो सब ग्रंथों के माध्यम से हुई है। प्रभुपाद का आंदोलन भी, प्रभुपाद ने अभी 30-32 साल हो गए शरीर छोड़कर, फिर भी उनका आंदोलन विश्व में सब जगह फैल रहा है। उनके जीवित में होते हुए रशिया में कुछ प्रचार नहीं हो पाया था, लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने रशिया में गुप्त रूप में प्रचार किया था। तो रशिया का विभाजन हो गया, रशिया एकदम सेकुलर कंट्री बन गया ना, अभी पहले कम्युनिस्ट कंट्री थी। रशिया में बहुत तूफान की तरह हरे कृष्ण आंदोलन फैल रहा है। तो जब हम उनको मिलते हैं, इन लोगों को, तो हमको अभी भी शर्म आती है। श्रीमद् भागवत के मॉर्निंग के प्रवचन में रशिया में 500 लोग आते हैं रोज, और भारत में 50-60-70 लोग बैठते हैं, अमेरिका में 10-15 लोग बैठते हैं। रशिया के नॉर्मल भागवतम क्लास में 500 लोग आते हैं श्रीमद् भागवत सुनने के लिए, रशियन लोग, लोकल नेटिव्स। हाँ, और जब कोई स्वामी सन्यासी आता है, जैसे हमारे गुरुजी वहाँ पहुँचते हैं, या निरंजन स्वामी है और कोई बड़े स्वामी वहाँ पहुँचते हैं, तो 12 घंटा फ्लाइट में बैठकर उनका भागवत प्रवचन सुनने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं। तभी 2000-3000 लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं श्रीमद् भागवत का कथा सुनने के लिए, और हम लोग विरार से जाए पहुँच नहीं पाते सुनने के लिए। इसलिए आपको मैं विनती करता हूँ, हो सकता है अभी की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन इस कथा के बाद में डॉक्टर निर्मल चंद्र प्रभु आपके लिए उपस्थित हैं। आप सोचें इसके बारे में, जीवन में परिवर्तन लाना है भगवान की ओर, इसलिए आपको ये मैंने प्रपोजल यहाँ पर रखा है। एनीवेज, के आगे की कथा ऐसी है कि प्रभुपाद जी के बारे में मैंने आपको बताया। इस मंदिर की एक अद्भुत स्थिति है टोटा गोपीनाथ की। ये दुनिया के एक ऐसे ही विग्रह है जो बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण का विग्रह बैठा हुआ है, बैठ के बांसुरी बजा रहे। इसका कारण क्या है? इसके दो कारण हैं। एक प्रमुख कारण ऐसा है कि जब भी ब्रह्मा जी ने उनका दर्शन किया, श्री कृष्ण भगवान ने उनको गोलोक का दर्शन कराया, तभी ये मूर्ति प्रकट हुई, तभी वो बैठे ही अवस्था में थी। उनके गले में सूर्य प्रकाश के समान तेजस्वी एक लॉकेट था, तो ब्रह्मा जी ने उसका भी वर्णन किया है अपने श्लोकों में, आलोल चंद्र कलशत वर्णमाल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम। हाँ, तो वो आप देखेंगे वहाँ पर। और बैठे क्यों हैं? क्योंकि जब ही चैतन्य महाप्रभु ने अपना लीला समाप्त किया, चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी तल पर 48 साल तक रहे, 24 ईयर्स मायापुर में, 6 साल भ्रमण में, और आखिरी 18 साल एक ही जगह पर जगन्नाथपुरी में। तो उसके बाद में 48 ईयर्स के एंड में एक साथ ही कुछ लोगों ने उनको जगन्नाथ जी के विग्रह में अंतर्धान होते हुए देखा, कुछ भक्तों ने उनको समुद्र में अंतर्धान होते हुए देखा, और कुछ भक्तों ने उनको टोटा गोपीनाथ के अंदर अंतर्धान होते हुए देखा। अभी पुजारी आपको दिखाएंगे, शायद उनका मूड अच्छा रहेगा। तो इनके जो बैठे हुए ना, तो उनके जंघा में ऐसे एक छेद है, वहाँ से महाप्रभु जी अदृश्य हो गए टोटा गोपीनाथ के अंदर। तो उसके बाद में क्या हुआ? तभी तो खड़े थे चैतन्य भगवान। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु के विरह से गदाधर पंडित बहुत फोल्ड करके बैठो, गदाधर पंडित जो है इतने विरह में आ गए भगवान के विरह में, इतने दुख में हो गए वो, कि केवल 45 साल की उम्र में एकदम बूढ़े से हो गए, उनको उठना भी मुश्किल हो गया। विरह के अंदर क्या होता है, मन जब दुखी होता है ना तो आदमी एकदम जल्दी बूढ़ा हो जाता है स्ट्रेस चिंता के कारण। ये तो आध्यात्मिक स्ट्रेस है, आध्यात्मिक विरह है, उसमें खाना पीना त्याग देते हैं भगवान के विरह में, तो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं वो। और इतने बूढ़े हो जाते हैं कि रोज की जो सेवा है ना भगवान को माला बनाने की पहनाने की, वो खड़े हो सकते नहीं। तो सोचते हैं कि अभी क्या मैं सेवा नहीं कर पा रहा, मेरा जीवन अभी व्यर्थ हो रहा है, किसी और को भाई तोटा गोपीनाथ की सेवा जो है मैं सौंप दूंगा, किसी अच्छे भक्त को देखूंगा और कहूंगा भैया तुम इस सेवा को संभाल लेना, मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ। ये सोचते हैं, सोते हैं रात को, स्वयं तोटा गोपीनाथ के सपने में आते हैं, बोलते हैं मैं तुमसे ही सेवा लूंगा और तुम मेरी सेवा क्यों छोड़ना चाहते हो, करो मेरी सेवा। बोले भगवान स्वप्न में कह रहे हैं कि भगवान क्या करूं मैं उठ नहीं पा रहा हूं, उठ के आपको माला पहनाने में मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे, मैं उठ खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। बोले कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगा और तुम मेरी सेवा करना। अगले दिन जब उठते हैं दर्शन खोलते हैं तो भगवान जो है बहुत छोटे हो गए तो वस्त्र को निकाल गए थे, तो भगवान पैसे पलटी मारकर बैठे हुए हैं फर्स्ट क्लास, और उसके बाद में आखिर तक वही स्वयं अपने हाथों से भगवान की सेवा करते हैं। और गदाधर पंडित भी स्वयं टोटा गोपीनाथ के अंदर ही अंदरधान हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कितना दिव्य मंदिर है ये हमारे लिए। चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित, कृष्ण और राधा रानी स्वयं गोपीनाथ के रूप में यहाँ पर विराजमान है, हम उनका दर्शन कर सकते हैं। हाँ, और इसके आगे जो चातक पर्व की कथा है हम वहाँ जाकर भजन गाएंगे गोपीनाथ जी के आनंद के लिए, और कोई जाके देखेंगे वहाँ पर मंदिर में क्या अवस्था है, शांति है, जा सकते हैं वहाँ पर। एनीबडी बोले किसी, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।